पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होती है और उसे कॉलेज जाने की अनुमति मिलती है। इस अध्याय में रुद्र रूही को साड़ी पहनाना सिखाता है और रूही उसकी छुअन से अजीब महसूस करती है। रुद्र उसे मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। दिशा और देवांश के बीच एक घटना होती है। दिशा रूही को देखकर हैरान और गुस्से में आ जाती है। चैप्टर 84। अब आगे। वही दिशा की नज़र जैसे ही रूही के कपड़ों और उसके चेहरे पर जाती है, उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी नज़र आने लगता है। इसलिए रुद्र जैसे ही रूही को ले नीचे आता है, वैसे ही दिशा तुरंत रूही के पास जा रूही को देखते हुए कहती हैं, रूही, ये सब क्या है और ये तूने अपना क्या हुलिया बनाकर रखता हुआ है और तू इस इंसान के साथ क्यों है? दिशा की बात सुनकर रूही अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि उसका दिशा की नज़रें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। वैसे भी वे दिशा को क्या ही बताती कि रुद्र ने उसे किस तरह ब्लैकमेल किया है, और वे अगर रुद्र के साथ ना गई तो वे किसी को चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए उसे अब रुद्र के साथ जाना ही होगा। मगर वे ये सब दिशा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर गलती से भी दिशा को ये पता चल गया कि रुद्र ने उसे किस तरह ब्लैकमेल करके अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया है, तो दिशा उसे कभी भी रुद्र के साथ जाने नहीं देती। दिशा जब देखती है कि रूही उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही, तो वे रूही का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोली, रूही, तू अभी मेरे साथ यहाँ से चल, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, मैं तुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इतना बोल वे जैसे ही रूही को ले जाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही रुद्र रूही को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके रूही सीधा उसके सीने से का टकराती है। रूही को अपनी बाहों में भरते हुए रुद्र दिशा को देख अपनी रौबदार आवाज में बोला, साली साहिबा, अगर आपको अनाथ आश्रम जाना है तो आप अकेले चली जाइए, क्योंकि रूह अब से मेरे साथ ही रहेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं, आखिर में आप मेरी इकलौती साली हैं, आपकी खातिरदारी को हम कर ही सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर दिशा गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी किसी भी खातिरदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और रूही मेरे साथ ही जाएगी। इतना बोल वे रूही को देख बोली, रूही चल। दिशा को परेशान देख रूही बोली, दी प्लीज आप चली जाओ, अब मैं इनके साथ ही रहूंगी, मैं अनाथाश्रम नहीं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। दिशा के कानों में जैसे ही रूही की आवाज पड़ती है, वे रूही को अविश्वास के साथ देखने लगती है, क्योंकि रूही से उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है, जो एक डेविल स्माइल के साथ उसी को देख रहा था, जिसे देख उसे समझने में देर नहीं लगती थी, ये सब कुछ रुद्र का किया धरा है। जिसे देख वे अपने दांत पीस लेती है। वहीं देवांश भी ये सब देख मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोला, भाई आप काफी चालाक हो, या यूं कहें कि भाभी कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, जिसे आप अपनी बातों में उलझा ही लेते हैं, मगर मेरे किस्मत में ये शेरनी है, जो जब देखो तब पंजा मारने को तैयार रहती है, पर कोई बात नहीं, इस प्यारी की शेरनी को कैसे संभालना है ये मुझे अच्छे से पता है। इतना बोल उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वहीं रुद्र बिना अब दिशा की आगे की बात सुने रूही को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं रूही को जाता देख दिशा अपने मन में बोली, रूही तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मैं तुझे इस शैतान से एक दिन जरूर बचा लूंगी। इतना बोल वे भी चली जाती है और सबको जाता हुआ देख देवांश भी दिशा के पीछे चला जाता है। सिंघानिया विला। रुद्र की कार सिंघानिया विला में पहुंचती है और रुद्र रूही को ले विला के अंदर चला जाता है। वहीं हॉल में सब बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि रूही के जाने की वजह से सब उदास थे। तभी रुद्र रूही का हाथ पकड़ हॉल में आ जाता है। वहीं जब सभी की नज़र रूही पर पड़ती है तो वे सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ रूही को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ देख सब शौक भी थे। जिसे देख परी अर्जुन से कहती हैं, अरे यार अर्जुन, ये रूह इतना सज धज कर क्यों आई है? यहां से जिस तरह से गई थी उसे देख मुझे लग नहीं रहा था कि वे दोबारा मेरे इस शैतान भाई के पास आना तो छोड़ मेरे इस शैतान भाई का चेहरा देखना भी पसंद करेगी, लेकिन ये तो इस तरह से सच कर आई है जैसे इस शादी से कितनी खुश हो। परी की बात सुनकर अर्जुन बोला, तू बोल तो ऐसे रही है जैसे अपने उस शैतान भाई को जानती नहीं है, तुझे नहीं पता कि हमारा ये शैतान भाई कितना ज्यादा खतरनाक है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ चाहा हो और इन्हें ना मिला हो? रूही अगर सीधे सीधे नहीं मानी होगी तो जरूर भाई ने कोई टेढ़ा रास्ता अपनाया होगा और रूही को डराया धमकाया होगा, और तू तो रूही को जानती ही है कि बेचारी कितनी मासूम है और हमारे भाई कितने ज्यादा चालाक, उन्हें रूही का ब्रेन वॉश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। अर्जुन की बात सुनकर परी अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं रूही जब सबको देखती है तो रुद्र से अपना हाथ छुड़ा तुरंत परी के पास आ जाती है। वहीं रुद्र जब रूही की यह हरकत देखता है तो वे अपनी जलती हुई निगाहों से उसे ही देखने लगता है। वहीं रूही जानती थी कि रुद्र उसे गुस्से से घूर रहा होगा, इसलिए वे उसकी तरफ देखती ही नहीं। तभी प्रीता रुद्र को देख बोली, अच्छा हुआ रुद्र कि तुम बहू को वापस ले आए, अभी तक बहू की कोई रस्म भी नहीं हुई है, अब आ गई है तो कुछ रस्म भी पूरी कर लेते हैं। प्रीता की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वहीं रुद्र अपनी जलती हुई निगाहों से रूही को देखता है, फिर वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं धीरज और दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं। सबसे जाने के बाद कामना रूही को देखते हुए ताना मारते हुए बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम इस तरह घर छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये सब तुम्हारा नाटक था ताकि रुद्र तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे और तुम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सको। वैसे भी रुद्र जैसे इतने हैंडसम और अमीर इंसान जो इस पूरी दुनिया पर राज करता हो और उसके एक इशारे पर लोग उसके पैरों पर गिरने को तैयार हों, वैसे लड़कों को कौन ही छोड़कर जा सकता है। जब तुमने हमारे रुद्र को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ही लिया है तो ये सब नाटक क्यों ही कर रही हो? वैसे भी तुम जैसे गरीब होते ही लालची हैं। इसके आगे कामना कुछ बोल पाती तभी प्रीता गुस्से में बोली, कामना बस कर, बहुत हो गया तेरा, कोई इस तरह नई बहू को बातें सुनाता है क्या?
अपनी माँ की बात सुनकर कामना मुंह बना लेती है और एक नज़र रूही को देख वहां से चली जाती है। वहीं कामना की सारी बातें सीधे रूही के दिल पर लगी थी, इसलिए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे।